भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम की। तो अब हम पढ़ेंगे आज का तीसरे स्कंद के चतुर्थ अध्याय का तीसरा श्लोक। तो इसके पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा, मैं बोलता हूं। भगवान स्वयं आत्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सरस्वती उपस्पृशा वृक्षमूलम उपाविशत। भगवान स्वयं आत्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सरस्वती उपस्पृशः वृक्षमूलम् उपाविशतः। भगवान स्वयं आत्ममायाया गतिं तामवलोक्य सरस्वती उपस्पृशः वृक्षमूलम् उपाविशतः। भगवान स्वयं आत्ममायाया गतिं ताम अवलोक्य सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपासितः। भगवान स्वयं आत्ममायाया गतिं ताम अवलोक्य सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशत्। भगवान स्वयं आत्ममायाया गतिं ताम अवलोक्य सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशत्। भगवान स्वयं आत्ममायाया गतिं ताम अवलोक्य सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशत्। और माता लोग पढ़ने जाते हैं, हम इसका अनुवाद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की यदो तथा भोजों के उपरीत समस्त कार्य भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर एक श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया, स्वयं आत्म मायाया। भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्व अंश अवतार थे या स्वर्ग लोगों के देवता थे, अतः अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने धामों में भेज जाने के पूर्व प्रवास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया तथा जी भरकर मदपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग ये देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो ये सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंग शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, उनकी अंतरंग शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतः ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्यता भ्रातृघाती युद्ध में उत्तम अवस्था में मरे। श्रीजीव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका जादूगर की कला के रूप में की है। ओम अज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं कदा मह्यं ददाति सत्कान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणप्रभुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशादेशकारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक की यहाँ चर्चा हो रही है। इसमें वर्णन है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था कृष्ण द्वारा की गई थी। तो मतलब यहाँ बताया गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसकी इच्छा से होता है? कृष्ण की इच्छा से होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है वो मेरे कारण, बुरा हो रहा है वो भगवान के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा और बुरा दोनों ही भगवान की इच्छा से होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी केयर, उनकी देखरेख भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उनकी देखरेख कौन करते हैं? अनंत कोटि देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताओं को सेवा में लगाया गया है ना। मान लीजिए आप अगर माया के वशीभूत होकर अपना जीवन गुजारेंगे तो दुर्गा देवी आपको जीवन में परेशानियां देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा ऐसी है। जैसे जेलर किसकी इच्छा से जेल खोलता है? प्राइम मिनिस्टर की इच्छा से। लेकिन हर कैदी का नियम क्या, किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, इसका कौन डिसीजन लेता है? या तो जज या फिर जेलर, है कि नहीं? लेकिन प्राइम मिनिस्टर का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सेवा करते हैं, उनकी देखरेख स्वयं प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसी प्रकार से जो लोग कृष्ण की सेवा में जाते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी देखरेख कौन करते हैं? स्वयं कृष्ण करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की सेवा में नहीं है उनकी देखरेख कौन करते हैं? उनकी देखरेख देवी देवता करते हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, दुर्गा देवी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये लोग उनकी देखरेख करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको भोग भोगने के लिए मिलता है। आप इस जन्म में कोई बुरा कर्म करेंगे तो आपको अगले जन्म में उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है ऐसा कर्म करिए जिसका कोई रिएक्शन ना हो, जिसका कोई परिणाम ना हो। जैसे एक दीवार है, उस दीवार पर, लोहे की दीवार के ऊपर आप एक टेनिस की बॉल लेकर जोर से मारिए, क्या होगा? वापिस आएगी। और एक चुंबक मैग्नेट की बॉल लेकर लोहे की दीवार में मारिए, क्या होगा? नहीं आएगी वापिस। तो इस प्रकार का कर्म दोनों ने किया, दोनों ने बॉल को फेंका, लेकिन एक की वापिस आई और एक की वापिस नहीं आई। तो जो व्यक्ति भौतिक कर्म कर रहा है वो ऐसे है जैसे टेनिस बॉल मार रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। और जो व्यक्ति भक्त है वो भी कर्म कर रहा है, वो मैग्नेटिक वॉल मार रहा है, लेकिन उसको रिएक्शन परिणाम नहीं मिल रहा उसके अपने कर्मों का। क्यों? वो कर्म किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से यहां बताया गया है कि जो कुछ भी हुआ घटनाक्रम, इतने सारे यदुवंशी मारे गए, उसका कारण स्वयं कृष्ण थे। तो ये सोचते हैं लोग कि यदुवंश के लोगों का आपस में लड़ाई हुई, इसके कारण उनका तहश नहश हो गया। देखो भगवान के साथ रहने के बाद भी यदुवंशों ने आपस में सुनी नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, यहाँ बताया गया है कि भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्व अंश अवतार थे, मतलब भगवान के ही अवतार थे, या स्वर्ग लोक के देवता थे। तो देवी देवता जहां से भगवान की सेवा के लिए आए, उन्हें वापिस भी तो जाना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। तो भगवान ने उनके लिए प्लानिंग करी, इस प्रकार का कार्य हुआ। क्या हुआ कि एक बार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका में, द्वारका जो गुजरात में है, वहां पर एक बार ऋषि विश्वामित्र और नारद मुनि दोनों आते हैं। जब वो दोनों आते हैं, नारद मुनि और ऋषि विश्वामित्र, तो जो कृष्ण भगवान के बच्चे थे, क्या नाम है उनका? अनिरुद्ध, साम, ये सारे मिलकर सप्ताही की, ये सारे मिलकर क्या करते हैं? विश्वामित्र तो टेस्ट करना चाहते हैं, कहते हैं हमने इनके बारे में बड़ा पढ़ सुना है कि बहुत बड़े ऋषि हैं, महान योगी हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है सब कुछ जान लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शाम को एक सुंदर सी स्त्री बनाकर, छोटी सी स्त्री बनाकर, बच्चों का खेल था, और उसके पेट में कुछ कपड़ा लगा दिया और आकर ऋषि विश्वामित्र से पूछा कि हे ऋषिगण, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो बहुत बड़े योगी हैं, जरा बताइए इसके लड़का होगा या लड़की होगी? लेकिन था क्या? कपड़ा था। तो ऋषि विश्वामित्र सचमुच में महान योगी थे, महान ऋषि थे, महान वैरागी थे, तो वो समझ गए कि मेरे साथ क्या किया गया है, मजाक किया गया है। तो तुरंत बोले कि जिस तरह तुम मेरा मजाक कर रहे हो, अब ये सचमुच में स्त्री बन जाएगी, किसी की भार्या बन जाएगी, और फिर क्या होगा, इसके गर्भ से लोहा उत्पन्न होगा, मूसल, और फिर जो मूसल होगा वही तुम्हारे पूरे यदुवंश के नष्ट का कारण बनेगा। और जब ये पता चला कृष्ण भगवान को, तो भगवान को जानते थे, उन्हीं की इच्छा अनुरूप ये सब कुछ हो रहा था। तो भगवान बोले कि अब जो शाप तुमने किया उसका पश्चाताप करने के लिए कहां जाओ? प्रभास क्षेत्र में जाओ। प्रभास क्षेत्र कहां है? गुजरात के पास एक जगह पड़ती है सोमनाथ, है ना, सोमनाथ जो इलाका है उसको प्रभास क्षेत्र बोला जाता है। तो वहां वो गए और वहां जाकर उन्होंने अनेक पुण्य कर्म किए। जब वो जा रहे थे तो कृष्ण भगवान ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि मदिरा पान मत करना, स्त्री संग मत करना, है ना, क्या करना? भगवान के नामों का जप करना। क्या बोलना? जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। लेकिन जो भक्त, जो उनके बच्चे थे, अब उनको विनाश का कारण आने वाला था भगवान की इच्छा के अनुसार। तो सब ने पहले तो क्या लिखा है यहां पर, इनको बताया है, उन्होंने क्या किया, भगवान के पारिवारिक जो उन्होंने अपने अपने धामों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए, सोमनाथ भगवान शिव जी की पूजा करी, भगवान के नामों का जप भी किया और भोजन किया, भर पेट खाना खाया, तथा मना करने के बाद भी क्या किया, जी भरकर मदिरा पान किया, मदपान किया। तो मदपान करने से विनाश होता है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे इस्कॉन संस्था में चार नियम में सबसे पहला नियम क्या है, नो इंटॉक्सिकेशन, मदिरा पान नहीं करना, चाय कॉफी नहीं पीना, इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की तपस्या रूपी धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जैसे धर्म के चार पैर होते हैं, है ना, पहला पैर क्या है, दया, दूसरा पैर है स्वच्छता, फिर है तपस्या, और फिर क्या है, सत्यता। ये धर्म के चार पैर है, कोई भी चीज चार पैरों पे चलती है, चाहे गाड़ी है कितने पैरों पे चलती है, चार पे चलती है, घोड़ा कितने पैरों पे चलता है, गाय कितने पैरों पे चलती है, और हमारे भी चार पैर है, दो हाथ और दो पैर, इसी से कार्य करते हैं अपना सारा। तो धर्म के भी चार पैर है, दया, सत्यता, स्वच्छता और तपस्या। तो ये जो चार पैर है, ये चार पैर कट जाते हैं जब चार पाप किए जाते हैं। कौन से पाप है? बताया गया जब कोई व्यक्ति मांसाहार का सेवन करता है तो उस व्यक्ति ने दया को काट दिया, दया का एक पैर तोड़ दिया। जब व्यक्ति पर स्त्री संग करता है, पर स्त्री के बारे में सोचता है, अपने अंदर से वो स्वच्छ नहीं रहता, बाहर से स्नान नहीं करता, चलो बाहर से उसने गंगा स्नान कर भी लिया लेकिन अंदर से वो अपवित्र रहता है, तो उसकी क्या भंग हो जाती है, स्वच्छता भंग हो जाती है। इसलिए बताया गया नो इलिसिट रिलेशनशिप, पर स्त्री संघ के लिए, पर स्त्री पर पुरुष संघ के लिए मना दिया गया। और क्या बताया, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, जुआ खेलने से व्यक्ति के अंदर सच्चाई चली जाती है। जुआ कभी होता है क्या बिना झूठ बोले हुए? झूठ बोल के जुआ होता है। इसलिए बोला गया कि सत्यता रूपी धर्म का एक पैर नष्ट हो जाएगा अगर आपने जुआ खेला, इसलिए नो गैम्बलिंग। और क्या बताया गया, नो इंटॉक्सिकेशन, शराब और मदपान करने से व्यक्ति तपस्विया नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति रात को शराब पिएगा वो सुबह 4 बजे आएगा या मंगल आरती में, सुबह उठेगा कार्तिक स्नान करने के लिए नहीं उठ पाएगा, क्यों, उसको हैंगओवर रहेगा रात का, जो उसने मदपान किया है शराब पिए वो सुबह उठ नहीं पाएगा। और जो लोग चाय के प्रति आसक्त हैं, चाय पीते हैं, हैबिट चाय की पड़ गई है, तो वो लोग जब करते रहते हैं उनको लगता है अरे 7 बज गए चलो थोड़ी चाय पी लें बाकी का जब बाद में करते हैं, तो चाय पीने की अभिलाषा उनको भगवान से अलग कर देती है। तो देखिए एक छोटी सी चीज चाय आपको भगवान से खींच लाती है, तो ये भी मना है। इसलिए बोला गया नो इंटॉक्सिकेशन, इसमें क्या क्या आता है, शराब चाय कॉफी सब कुछ आता है, स्मोकिंग पान खाना तम्बाकू खाना सब आता है। तो देखिए कि भगवान की इच्छा अनुरूप अगर हम नहीं चलेंगे, जैसे ये लोग नहीं चले, तो हमारा भी क्या होगा, जीवन में विनाश होगा। भगवान ने भगवद गीता में जो जो बताया इंस्ट्रक्शन, हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन लोगों को क्यों पालन नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को शास्त्र पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। तो उन्हें क्या लगता है, अरे भगवान ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, वो अपने अपने निर्णय लेते रहते हैं। अरे बताओ ऐसा चल रहा है आजकल, इतना कलयुग चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतना ये चल रहा है, इतना वो चल रहा है। एक शास्त्र में बताया गया है पद्म पुराण के अंदर कि अभी जो ये पूरा चतुर्युग है, चतुर्युग में कौन कौन सी युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये एक दिन के अनुसार है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो उस दिन के अंदर जो ये सुबह होती है ना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय है ये सतयुग है। उसके बाद 8 बजे से लेकर जो दोपहर के 12 बजे तक का समय है वो त्रेता युग है, और दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो समय है 4 बजे तक वो क्या है, द्वापर युग है। और उसके बाद संध्या आती है कलयुग की, और जो रात्रि आती है अंधेरा आता है ये पूर्ण रूपेण कलयुग है। तो बताते हैं कि अभी इस कलयुग की संध्या चल रही है, पहली संध्या, जैसे होता है ना दोपहर के बाद 4:30 बजे गौ धूली वेला, अभी जो लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा गाय चल रही है, धूल उड़ रही है और सूर्य अस्त हो रहा है। तो ये समय है ये संध्या कहलाता है ना, शाम का समय, संध्या आरती हम बोलते हैं। तो वो समय जो है अभी चल रहा है कलयुग का, और इसके बाद क्या आएगा, पूर्ण रूपेण कलयुग, अंधेरा आएगा। और इसीलिए अंधेरे में बियर बार होते हैं, जुआ खेला जाता है, मर्डर किए जाते हैं, रेप किए जाते हैं, ये सब अंधेरे का कारण है। तो बताते हैं कि जो ये कलयुग की संध्या है इसकी इसकी उम्र है 15,000 साल। कितनी, 15,000 साल, जिसमें से 5,000 साल निकल चुके हैं, अभी कितने बाकी हैं, 10,000। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बोलते हैं इस्कॉन मूवमेंट विल गो फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, मतलब धर्म ही बस 10,000 साल रहेगा, और जब तक धर्म रहेगा तब तक क्या रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो देखिए धर्म चला जाएगा, उसके बाद 10,000 साल के बाद कोई व्यक्ति जप नहीं करेगा, मंदिरों का निर्माण नहीं होगा, सारे ध्वस्त कर दिए जाएंगे, सिर्फ क्या चलेगा, एक दूसरे का मांसाहार, हमारी तुमसे लड़ाई हो गई तो कल से ब्रेकफास्ट में तुम्हारा ही भोजन चलेंगे, इस तरह से लड़ाई, सबके पास रिवॉल्वर के लाइसेंस होंगे ना, और सब एक दूसरे को गोली मारने को आतुर रहेंगे, जैसे आज हो रहा है ना, इंडिपेंडेंस फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, स्वतंत्रता, इतनी स्वतंत्रता है कि एक दूसरे को गोली मारने पर तैयार है लोग, पहले भाईचारा होता था, आज तो लोगों की परिवार में नहीं बन रही है, बस पति पत्नी बच्चा, उसमें पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, एक हमारे रहते हैं द्वारका में, वो पत्नी है अकेली, पति अलग रहते हैं, उनके माँ बाप अलग, उनके माँ चार एक ही जगह रहते हैं द्वारका में, पर 4 घर है, पत्नी जो अलग से आती है अलग घर में रहती है, बच्चे अलग से आते हैं और मतलब पति के साथ में, और फिर इधर से माँ बाप आते हैं, तो चारों जानते हैं हमको, चारों अलग अलग कथा बताते हैं कि इनने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, लेकिन चारों एक साथ क्यों नहीं, क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं है, कृष्ण नहीं है। आप जब कृष्ण आ रहे हैं तो उनको अपने गिल्टी होती है, एहसास हो रहा है हमने कहाँ गलत किया, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाया। तो हमको भगवान पर, भगवान के शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, उसने देखा कि भगवान कृष्ण गोविंद सारा दिन खड़े रहते हैं, है ना, चलो मैं इनकी थोड़ी सेवा करूं। तो लोगों को आता है ना कि भगवान की सेवा भगवान के नामों का जप करना नहीं है, भगवान की सेवा लोगों को लगता है कि भगवान की कुछ फिजिकल सेवा की जाए, शारीरिक रूप से, तो उनके पांव दबाएं, उनको वस्त्र पहनाएं, तो ये भी सेवा लगती है। जबकि कलयुग में सबसे बड़ी सेवा क्या है, भगवान के नामों का जप करना, ये 99% आपकी भक्ति है, 1% जो बचता है वो है साधु संग। लेकिन डीटी वर्शिप जो करना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भगवान के नामों का जप करना। तो जो ये भगवान का विग्रह है, इसकी सेवा करने का उसके मन में इच्छा आई और बोला, कृष्ण आप सारा दिन खड़े रहते हैं, कभी मुझे भी मौका दीजिए, आप सोइए और मैं क्या करूंगा, आपके स्थान पर खड़ा हो जाऊंगा। तो भगवान बोले, यहाँ सिर्फ खड़े रहने की बात नहीं है, यहाँ डिसीजन देने पड़ते हैं, जीवन का निर्णय लेना पड़ता है, किसको क्या फल देना है सोचना पड़ता है, किसके मन में क्या चल रहा है तुझे नहीं पता, मुझे पता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम जो परंतप, तुम नहीं जानते हो कि सबके हृदय में क्या चल रहा है। श्री राधा गोविंद ने लिखी है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व गौर लिखा है, फतेह भगवान श्री कृपाल की जय। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को बोला कि जो परंतप हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, तुमने पूर्व जन्म में क्या किया है, लेकिन मैं सबके बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं कौन हूं भगवान। ऐसे उस व्यक्ति को समझाया और बोला, नहीं 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 गोविंद, मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान बोले, ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन कुछ कहना मत, बस खड़े रहना और जो आए उसको आशीर्वाद देते रहना, बस ऐसे करके खड़े रहना या ऐसे करके खड़े रहना। तो बोला, ठीक है। तो उसने ब्लू कलर का पेंट किया अपने फेस पे, पूरा लगाया, फ्लावर गार्लैंड भगवान का पहना और धोती पहन के भगवान की तरह खड़ा हो गया। भगवान बोले, मैं विश्राम करूं? हाँ चलिए, भगवान सो गए। लेकिन भगवान तो सोते सोते भी योग निद्रा में भी चतुर्मास में लोगों को भक्ति प्रदान करते हैं, तो भगवान कभी सोते नहीं है, इसलिए तो वो भगवान है। निद्रा से भी ऊपर है, परे है, भौतिक शरीर से ऊपर है, परे है, दिव्य शरीर धारण भगवान है। तो ऐसे भगवान बोले, मैं सो जाता हूं। भगवान सो गए। अभी क्या हुआ, जब वो खड़ा था तो उसी ये जो मंदिर था, ये जंगल के इलाके में था, पूरा जंगल का इलाका था, और उसमें एक व्यक्ति आया और वो जुआरी था, जुआ खेलता था, और उसने इस बार जुए में दीपावली का जुआ जो खेला उसने, उस पर उसने खूब धन कमाया, इतना धन कमाया कि वाह, 5-5 लाख की दो गड्डियां मिल गई उसको, और उसने अपने दोनों कोट की जो जेब होती है ना उसने भर लिया, और फिर क्या आया, भगवान के आगे थैंक यू बोलने आया। तो ये चोर भी होते हैं ना, इनके हृदय में भी भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान तो परमात्मा रूप में कुत्ते बिल्ली सुअर सब में, तो चोर में क्यों नहीं होंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, चोर में और भक्त में क्या फर्क है, राक्षस में और भक्त में, भक्त हृदय की आवाज सुनता है और जो राक्षस होता है वो हृदय की आवाज नहीं सुनता। वो क्या करता है, वो बोलेंगे ये गलत काम है, मत कर मत कर, उसको दबा के करते हैं, है ना। वरना अगर ऐसा नहीं होता कि सबको आवाज नहीं है, तो शराब जो लोग पीते हैं वो बच्चों के साथ बैठ के क्यों नहीं पीते, क्योंकि उनके मन में ये डर होता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, गलत काम है। और जो हम लोग हरिनाम लेते हैं, हम तो बच्चों के सामने थैली लटका लटका के जप करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या है, अच्छा काम है। तो हृदय की आवाज जो सुनता है वो भक्त है, जो नहीं सुनता वो अभक्त है, वो राक्षस है, है ना। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति आया और भगवान को प्रणाम किया, तो उसकी जेब से 5 लाख की गड्डी टपक गई और फिर वो चला गया। जब वो चला गया तो पीछे से गरीब व्यक्ति आया और उस गरीब व्यक्ति ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना करी कि हे कृष्ण, हे गोविंद, इतने दिन हो गए आपकी भक्ति करते, 15 साल, जब मेरी बेटी छोटी थी तब मैंने कहा था कि इसकी शादी का कुछ अरेंजमेंट करना, तो आप कुछ अरेंजमेंट करिए। और आंख बंद करके जब दंडवत करके उठा तो देखा उसके पांव के पास में 5 लाख रुपए की गड्डी पड़ी है। तो खुश होकर बोले, वाह गोविंद, क्या अरेंजमेंट किया है आपने, पैसे ही फेंक के मार दिए मेरे को। तो उसने वो गड्डी उठाई, जेब में रखी, देखा इधर उधर किसी की नहीं, और बेचारा जंगल में वापस चला गया। इतनी देर में पीछे से क्या हुआ, एक तीसरा व्यक्ति आया जिसको कहां जाना था, गांव से शहर जाना था बस में बैठ के। तो उसके बस का टिकट था, सब कुछ था, अपने परिवार को बोल के आया कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग करूंगा, पढ़ाई करूंगा, फिर वहां से मैं क्या करूंगा, नौकरी करूंगा और फिर अपने परिवार का पालन करूंगा। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, वो चला गया अपनी नौकरी करने पढ़ने के लिए। जब वो जा रहा था वो आया प्रणाम करने की, चलो भगवान को एक बार प्रणाम करते, जैसे हम लोग यात्रा में जाने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। तो वो प्रणाम करने जब आया तो भगवान को प्रणाम कर रहा था, इतनी देर में जो पहला व्यक्ति था जिसके पैसे गुम हुए थे वो पुलिस को लेके आ गया, बोले इस मंदिर में चोर है, मेरा पैसा मिल नहीं रहा है, कहाँ गुम हो गया, मेरे 5 लाख रुपए गुम हो गए हैं, हमारे गुम हो जाए तो हम भी पुलिस ले आएंगे मंदिर के, लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाना नहीं चाहिए, हमें भक्तों से पूछना चाहिए कि प्रभु जी मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो क्या हुआ, बताया गया है कि सब कुछ भगवान की इच्छा अनुरूप होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति को जो तीसरा व्यक्ति प्रणाम कर रहा था उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, देखा कोई है ही नहीं गांव में जंगल में, बस यही एक व्यक्ति है, पकड़ लिया उसको, बोले झूठ बोलता है, कहां है 5 लाख रुपए दे। तो बोला कि देखो भाई मैं तो अपने परिवार को छोड़ के शहर में नौकरी करने जा रहा हूँ, आज मेरी बस है, मैंने बस बुक कर रखी, मेरा टिकट है मेरे पास, आप देखो मैं जा रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए, हाँ यही तो होता है, 5 लाख रुपए लेके गांव से फरार हो जाएगा, खर्च करेगा और फिर वापस कमा के लौट आएगा। तो इस तरह से जब बोला गया तो अब जो कृष्ण बन के खड़े थे उनसे देखा नहीं गया और बोले छोड़ दो इसे, ये पापी नहीं है,
ये झूठा नहीं है। एक गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए उठाकर इस तरफ को गया है, वो है। तो गए, उस गरीब व्यक्ति को देखा, वो धीरे धीरे जा रहा था, उसको पकड़ा, उसके 5 लाख रुपए लिए, वापस उसको दे दिए ज्वारी को और उसको छोड़ दिया। वो व्यक्ति भी अपने शहर चला गया। इतने में कृष्ण भगवान आए और बोले, क्या मूर्ख, तूने क्या किया, मेरी सारी की सारी प्लानिंग बिगाड़ दी, सारी की सारी प्लानिंग बिगाड़ दी। बोले क्यों? बोले देखो, वो जो ज्वारी था वो हर साल इसी तरह से झूठ बोल बोल के 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाता है, वो मेहनत नहीं करता है। तो मैंने इस बार सोचा था कि उसको थोड़ा झटका दूंगा तो शायद वो कृष्ण भावना भवित बने, अरे आगे गिड़गड़ाए हैं भगवान मेरा लॉस हो गया कुछ करो, और कोई भक्त इसको क्या पकड़ा दे, हरे कृष्णा पकड़ा दे इसको, क्या पता है ना। अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु भगवान के पास आते हैं धन की कामना, दुख के कारण, जिज्ञासा के कारण, या फिर ज्ञान प्राप्त करने के कारण। तो ये आया, दुख के कारण आ जाता तो ये कृष्ण भावना भविष्य बनता, तुमने इसको डिवोटी बनने से रोक दिया। दूसरा, वो गरीब व्यक्ति बेचारे का इतना विश्वास था कि योगक्षेमम वहामि अहम, मैंने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति का जो भी चाहिए जरूरत है वो मैं उसको देता हूं, उसकी जरूरत थी तो मैंने उसका अरेंजमेंट करवाया था, तुमने उसको भी खत्म करा दिया। और जो तीसरा व्यक्ति था, आज वो जब बस में जाता तो उस बस में किसी टेररिस्ट ने बॉम्ब रखा था, और वो बॉम्ब ब्लास्ट में जितने यात्री थे वो मारे जाते, लेकिन क्योंकि ये भाग्यशाली था, क्योंकि ये पुण्यवान था, क्योंकि ये कर्म करता था, अच्छे भजन करता था, इसलिए मैं इसको बचाना चाहता था। ये पूरी रात जेल में गुजारता, उधर बम फट जाता और ये लेट हो जाता, ये जब दूसरे दिन जाता तो इसको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि इसके पास पैसे बरामद नहीं होते तो इसको पुलिस वाले छोड़ देते, लेकिन तुमने क्या किया, मेरी सारी प्लानिंग में गड़बड़ कर दिया। अभी क्या होगा, वो जुआरी और ज्यादा विश्वासपूर्ण से जुआ खेलेगा, और जो भक्त है गरीब उसका विश्वास टूट जाएगा कि मैंने इतनी गिड़गिड़ाया कि भक्ति करी, कृष्ण ने मेरा साथ नहीं दिया। और जो व्यक्ति आया था मुझे प्रणाम करने की मेरी यात्रा सफल करना, उसका क्या होगा, आज बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव कर्म, सामूहिक कर्मों के कारण आज उस बस में जितने यात्री हैं सबको मारा जाएगा। ये भगवान की प्लानिंग होती है, जितनी भी सुनामी आती है, जितने एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं, ये सब सामूहिक कलेक्टिव कर्मा के कारण होता है। कलेक्टिव कर्मा क्या, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मुर्गा खाता है, मांसाहार का सेवन करता है, एक व्यक्ति उसको काटता है, एक व्यक्ति ऑटो में रख के मुर्गियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उसमें और वो उसकी मुर्गी का चालान नहीं काटता कि तुमने इतनी सारी मुर्गियां लेके रोड पे घूम रहे हो, कहता ठीक है 10 रुपए 20 रुपए दे दो जाओ, पास कर दिया। तो वो पुलिस वाला, वो ड्राइवर, वो चाकू बनाने वाला, वो पत्थर की सिल बनाने वाला, वो जाली बनाने वाला, सबको उस मृत्यु का कर्म लगेगा। और एक दिन जब ये कर्म बराबर हो जाएंगे तो सब यात्री इकट्ठे करके एक साथ भगवान के द्वारा, यमराज के द्वारा मारे जाते हैं। तो ये कलेक्टिव कर्म होता है, सामूहिक कर्मों के द्वारा मृत्यु प्राप्त होती है। तो इस तरह से उसको भी मृत्यु मिलने से बचाना चाहते थे कृष्ण, तो उस व्यक्ति ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो गोपाल जी एक जगह बोल रहे अपने प्रवचनों में कि हमारा तुम्हारा प्लान नहीं चलता, किसका प्लान चलता है, कृष्ण का प्लान चलता है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, बस भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और तो क्या सोचो कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ भी आती है तो ये सोचना चाहिए कि आज मुझे 80 थप्पड़ पड़ने थे, एक ही थप्पड़ पड़ा है। हम क्या सोचते हैं, एक भी क्यों पड़ा है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि 80 पढ़ने थे एक पड़ा। और कृष्ण तुम इतने हमारे प्रिय हो, हम पर इतनी कृपा करते हो कि हमें इसको सहने की शक्ति भी दी तुमने, है ना। लेकिन हम घबरा जाते हैं सिचुएशन जैसे, अरे किस कर्म का भोग मिल रहा है मुझे, मैंने ऐसा क्या किया, अरे तुमने किया उसी का तो भोग भोगना पड़ रहा है। जब यदुवंश के लोग हैं वो भी कृष्ण की प्लानिंग के अनुसार एक दूसरे से झगड़ा कर मारे गए। जब वो प्रभास क्षेत्र से लौट के आए तो युद्ध के कारण वो जो मूसल था उस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया गया कि चलो इसको फेंक दो। और जो मूसल से क्या हुआ, जो समुद्र के छोटे छोटे तिनकों से बड़ी बड़ी घास बनी, वो घास ऐसी थी जैसे लोहे की तलवारें। और यदुवंशी जो है आपस में लड़ाई करके, तू तड़क हो जाता है ना, तू तड़क करके आपस में, और महाभारत के जो बचे हुए लोग थे कृतवर्मा आने उनके साथ युद्ध करके आपस में कोई घास के तलवारों से लड़ लड़कर एक दूसरे को मारे, और मारकर कहां चले गए, वापस भगवान। तो ये किसके कारण हुआ? अभी कोई बोले कि लड़ाई हो रही है, देखो लड़ रहे हैं, वो भी किसके कारण लड़ रहे हैं, कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ रहे हैं। कोई भक्ति कर रहा है, वो भी किसने कर रहा है, कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हमारी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से मिलाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, जो शुरुआत में बताया, अगर हम कृष्ण की इच्छा से मिलाएंगे तो कृष्ण की रक्षा करेंगे, और कृष्ण की इच्छा से नहीं मिलाएंगे तो हम यमलोक जाएंगे, हम देवी देवताओं के शरण में जाएंगे और उन्हीं के द्वारा हमारा रक्षण किया जाएगा।
तो ये बताया गया है, एक बार श्री गौर गोविंद महाराज जो कि भुवनेश्वर में महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, हिजोलीनाथ गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो एक बार प्रवचन कर रहे थे, और वो प्रवचन जब करते थे भागवतम का, तो एक घंटे नहीं करते थे, चार बच्चे घंटे, पांच घंटे, छह घंटे ऐसे लेक्चर देते थे। तो जो भक्त है, जैसे आप जैसे भक्त हैं, बहुत सीधे साधे भक्त जो है, वो बेचारे इंतजार करने लगते हैं, पौने नौ पे घड़ी देखते हैं कि कब प्रसाद मिलेगा, है ना, प्रवचन कब समाप्त होगा। तो इसी प्रकार से भुवनेश्वर मंदिर में भी सारे भक्त घड़ियां देखा करते थे, कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। तो कुछ भक्त हिम्मत करके महाराज के पास गए और बोले, महाराज आप जब प्रवचन करते हैं तो चार घंटे, पांच घंटे, छह घंटे प्रवचन करते हैं, आप इन प्रवचनों को छोटा क्यों नहीं करते। महाराज जो है वो गुस्सा करके बोले, आई एम नॉट स्पीकिंग, कृष्ण स्टेइंग इन माई हार्ट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, कृष्ण मेरे हृदय में बैठकर बोल रहे हैं। तो देखिए ये होती है श्रद्धा, है ना। हमारे जीवन में कोई तकलीफ आए तब भी हमें क्या सोचना चाहिए, कृष्ण की कृपा है। जब हमको कुछ योगदान तपस्या का फल भी मिले, हमें यश मिले, नाम मिले, तभी क्या सोचना चाहिए, किसकी कृपा है, कृष्ण कृपा है। तभी मान लीजिए जो स्पीकर है ये सोचने लगे, देखा मैं कितनी अच्छी आवाज निकालता हूँ, कितना सुंदर कीर्तन करता हूँ, तो कीर्तन कौन कर रहा है, कीर्तन तो भक्त कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये माइक और स्पीकर की कोई योग्यता नहीं है। इसी प्रकार से जो इस व्यासासन पे बैठकर प्रवचन दे रहा है, कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है या किताबों का वितरण कर रहा है, ग्रंथों का, उसको ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरे कारण हुआ, किसके कारण हो रहा है, कृष्ण के कारण हो रहा है। इस प्रकार से ये माइक और स्पीकर की कोई योग्यता नहीं है, किसकी योग्यता है, बोलने वाले की। इस तरह बोलने वाले को सोचना चाहिए ये कोई मेरी कोई योग्यता नहीं, किसकी योग्यता है, कृष्ण की और गुरु की योग्यता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए और जब अपने प्रवचन करते थे तो लोग बोलते थे, वाह प्रभुपाद जी आपने क्या प्रवचन दिया, क्या आज आपने कितना ज्ञान दिया हमको। तो प्रभुपाद कहते थे, दिस इज द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। इस तरह से हमको बोलना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारे कृष्ण के कारण हो रहा है। कृष्ण जो है कौन है, चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, और जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो कौन है, वो भगवान का गुरु का प्रतिनिधि, हमारे भगवान का प्रतिनिधि है, गुरु फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, शारीरिक रूप में बाहर है, और अंदर चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण बैठकर हमसे सब कुछ कराते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब हो पाएगा, जब हमारे जीवन में क्या होगी, श्रद्धा होगी। बताते हैं भगवान से प्रेम करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, प्रेम। बोलते हैं आप में से मंगल आरती कितने लोग आते हैं सुबह, तो हम सुबह मंगल आरती में क्या बोलते हैं, दस नाम अपराध, उसके बाद में क्या बोलते हैं, भगवान के नामों को ध्यान पूर्वक ना करना भी एक प्रकार का अपराध है, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, जो भक्त अपने को वैष्णव समझता है उसे इन दस प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहना चाहिए, और कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, ये क्या है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। रोज लक्ष्य बताया जाता है, और रोज जैसे ही वो समाप्त होता है हमारा लक्ष्य बदल जाता है। बाहर निकल के लक्ष्य हो जाता है क्या, कि बच्चों को पालना है। किसी का लक्ष्य हो जाता है मुझे नाम कमाना है, किसी का लक्ष्य होता है मुझे धन कमाना है। आज धनतेरस के दिन आप देखिए सब अपना लक्ष्य भूलकर दुकानों पे दुकानदारों की पिटाई करते हैं, है ना, भीड़ लग जाती है और बर्तन खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, जबकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। तो आज भगवान विष्णु का अवतार होता है धनवंतरी के रूप में। धनवंतरी वो है जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया, आयुर्वेद। आयुर्वेद जानते क्या होता है, वेद मतलब ज्ञान और आयु मतलब उम्र, एज। तो जो ज्ञान उम्र बढ़ाने के काम आता है, रोगों से निरोगी बनाता है, उसको आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद, है ना। वो आयुर्वेद जो है उसको ज्ञान किसने दिया, भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी ने। तो आज उन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें आप आरोग्य बनाइए, रोगहीन बनाइए, ताकि हम सदा आपकी सेवा में तत्पर रहे, सुबह से लेकर रात तक भगवान का स्मरण कर सके। ये है धन। बर्तन खरीदने से क्या होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। लेकिन लोग लगे हैं दुकानों को फोड़ रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं दुकानदारों की, मेरी चम्मच, मेरा बर्तन, मेरी कटोरी, है ना। ये नहीं है धन के घर। तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो सात सीढ़ियां, नौ सीढ़ियां हैं, ये शुरू होती है आदो श्रद्धा ततो साधु संग। सबसे पहले क्या है, श्रद्धा, फिर क्या आएगा, साधु संग, फिर क्या आता है, भजन क्रिया। जब भजन करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम। तो जब ये भजन क्रिया करते हैं तो हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। क्या निवृत्ति होती है, अनर्थ। अनर्थ मतलब समझते क्या है, रूपा जी बता रहे हैं, अर्थ मतलब किसी वस्तु का कोई मीनिंग है, किसी वस्तु का कोई मीनिंग है, बोलते ना प्रभु जी इसका क्या अर्थ है, अर्थ मतलब मीनिंग, और अनअर्थ मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमारे जीवन में जैसे बर्तन खरीद रहे हैं, ये क्या है, इसका कोई अर्थ है नहीं है, तो क्या हो गया, अनर्थ हो गया। अभी हम जो है लगे हैं भोग विलास में, पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये क्या है, इसका कोई अर्थ है, इससे कुछ प्राप्त होगा लक्ष्य नहीं होगा, तो क्या हो गया, अनर्थ। तो देखना चाहिए पैरामीटर है, जो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करे वो अर्थ, जो ना प्राप्त करे वो अनर्थ। तो अनर्थ निवृत्ति कब होगी, जब भजन क्रिया होगी, और अनर्थ निवृत्ति होने के बाद व्यक्ति की निष्ठा आती है भगवान के ऊपर, क्या आती है, निष्ठा, एकदम भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है कि जो कुछ भी करेंगे वो कौन करेंगे, कृष्ण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो प्रभुपाद जी अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण अगर तुम चाहते हो तो तुम प्रचार करवाओगे, अगर चाहते हो तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि रास्ते में दो बार हार्ट अटैक आ गया था और अनगिनत बार प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया, उनका खून रुक जाता था, ठंडा ठंडा खून रुक जाता था। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बता रहे थे 80 साल की उम्र तक प्रभुपाद जी ठंडे पानी से नहाते थे, अमेरिका जैसे ठंडे इलाकों में, साइबेरिया और रशिया जैसे इलाकों में जब प्रभुपाद प्रचार करते थे तो भक्त कहते थे प्रभुपाद हॉट वाटर, गर्म पानी, प्रभुपाद क्या कहते थे, नहीं मैं सिर्फ ठंडे पानी से स्नान करूंगा। एक बार उनको इतना जोर का हृदय रोग हुआ कि डॉक्टर ने क्या कहा कि देखो प्रभुपाद जी, स्वामी जी आपको है ना ठंडे पानी को छोड़कर गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोले मुश्किल है मेरे लिए, मैंने 80 साल का जीवन सिर्फ ठंडे पानी से गुजारा है, देखिए अमेरिका जैसी ठंड, हमारे यहाँ तो ठंड भी नहीं पड़ती फिर भी गीजर चला रहे लोग, टंग ठंड गर्म, अनर्थ है जीवन के। तो हमें सीखना चाहिए अपने वैष्णव आचार्यों से, पूर्ववर्ती आचार्यों से, प्रभुपाद जी से कि हमको किस प्रकार का अपना जीवन जीना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी जब करते थे तो जब ध्यानपूर्वक करते थे तो वो बोले कि प्रभुपाद स्वामी जी आपको वॉक करना पड़ेगा, अगर आप चलेंगे नहीं तो चले बिना आपके हृदय रोग बढ़ जाएगा और आप फिर प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है मैं थोड़ा वॉक करने का भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर तीसरी चीज उन्होंने बोली डॉक्टर ने कि आपको आयुर्वेद दवाइयों को छोड़कर क्या पड़ना खाना पड़ेगा, एलोपैथिक दवाइयों, जैसे हम खाते हैं ना सिर दर्द हुआ हालिया पेन किलर, हाथ दर्द हुआ पेन किलर, सब दवाइयों के ऊपर जीवन जी रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे एलोपैथिक दवाई है जहर है, क्या है, जहर है। इसी प्रकार से तो ये तीन चीजें जब डॉक्टर ने बोली तो प्रभुपाद ने दो चीजों को 80 साल के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया। किस चीज को, पहला कि मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, इसीलिए आप उनके मॉर्निंग वॉक लेक्चर देखते हैं, सुबह प्रातःकालीन जब वो वॉक करते थे चलते थे तो उस समय वो प्रचार भी करते थे जब भी करते थे, तो मॉर्निंग वॉक कर लिया, और दूसरा गर्म पानी से नहाना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये निष्ठा थी उनकी, इतने साल तक उन्होंने कृष्ण भक्ति कितने सुदृढ़ तरीके से करी है ना। और फिर क्या किया, तीसरी चीज उन्होंने एलोपैथिक दवाइयों के लिए मना कर दिया, लेकिन भक्त जो चाहते थे कि हमारे गुरुदेव ज्यादा समय तक इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं करें, हमें प्रचार करें, हमें ज्ञान दें, तो वो क्या करते थे, प्रभुपाद जी के जूस के गिलास में एलोपैथिक दवाइयां मिला देते थे, और फिर जब प्रभुपाद जी पी रहे थे तो एक दो बार तो पता नहीं चला, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी को पता चल गया टेस्ट। तो प्रभुपाद जी बोले, प्रचार कर रहे थे, कथा में रिकॉर्डिंग चल रही थी, और प्रभुपाद बोले कि लगता है किसी ने मुझे जहर दिया है, है ना, क्योंकि क्या बोलते थे एलोपैथिक दवाइयों को, जहर। तो सारे भक्त हंसने लगे और सब क्या बोले, देखो दवाई असर कर रही है ना। तो कुछ भक्तों ने उसी वीडियो क्लिप को काट कर बोला कि प्रभुपाद जी को जहर दिया गया। तो इस तरह के कुछ अनर्थ दिमाग के जो बुद्धिमान लोग हैं वो अनर्थ करते हैं जीवन में। ये क्लिपिंग का मतलब क्या था, उस क्लिपिंग को काट कर कहां से कहां जोड़ दिया और प्रचार किया कि देखो शिष्य ऐसे हैं कलयुग के जो अपने गुरुदेव को ही खाना चाहते हैं, है ना, तो उनकी गुरु पर निष्ठा नहीं है, और क्या किया उस क्लिप को काटकर प्रचार करते हैं कि प्रभुपाद जी को जहर दिया गया। तो हमें समझना चाहिए हर एक चीज की गहराई के अंदर जाकर कि असलियत बात क्या है, लॉजिक क्या है इस चीज का। जब ऐसी निष्ठा आएगी तो फिर कृष्ण भक्ति में रुचि आएगी, आनंद आएगा, रुचि आएगी, मन करेगा ओहो कब सुबह होगी और मैं कब जप करूंगा, है ना। लेकिन हमें क्या लगता है, ओहो फिर सुबह हो गई, फिर से सुबह हो गई, ओह फिर जब करना पड़ेगा, और 16 माला कब खत्म होंगी मेरी, ओह अभी भी 4 पेंडिंग है, हे भगवान किस दिन था वो, ऐसा कौन सा अशुभ दिन था जब मैं इस्कॉन के भक्तों से मिल गया, कब मेरे गले में ये कंठी माला और जप माला मिल गई मुझे, कौन सा अशुभ दिन था, कब ये जीवन समाप्त होगा और ये पीछा छूटेगा मेरा। तो इस तरह का हमारी जो है ये रुचि नहीं, ये क्या है, अभी श्रद्धा के लेवल पे भी नहीं आए हम लोग।
तो जब रुचि आएगी तब फिर आसक्ति होती है। कृष्ण के बिना एक पल नहीं रहा जाता। जैसे एक गोपी है, गोपी वल्लभ है, जितने भी कृष्ण के प्रिय है, वो भगवान के बिना विरह में रोने लगते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, कब कृष्ण का दर्शन हुआ, कब कृष्ण का दर्शन हुआ। ये आसक्ति है। और जब आसक्ति आती है तब भाव उत्पन्न होता है, सखा भाव, गोपी भाव, तब वात्सल्य भाव, यशोदा मैया जैसा भाव। आज दामोदर हम मास बना रहे हैं, यशोदा मैया का भाव वो लेवल है, भाव का लेवल। और हम क्या सोचते हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में लगती, हम भी यशोदा मैया है, हम भी गोपी है, ऐसा नहीं। हम नहीं है अभी उस लेवल पे, अभी तो हम भजन क्रिया के लेवल पे भी नहीं, श्रद्धा के लेवल पे भी नहीं। सोचिए जरा। और फिर जब वो भाव आएगा, जैसे अर्जुन का भाव है, तब क्या प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफी समय लगेगा। तो भगवान कहते हैं क्या, अनन्य चिंतयंतो मां ये जना परिपासते तेषां नित्य अभ्युत्थानां योगक्षेमं वहानी। जिसकी जो जरूरत होती है उसको मैं पूर्ण करता हूँ। तो एक सुंदर सी कथा सुनाकर हम समाप्त करेंगे। एक बार उड़ीसा में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था तनिचा महापात्रा। आप लोगों ने कुछ ने सुना होगा उनके बारे में। और जगन्नाथपुरी के वो पुजारी थे, भगवान जगन्नाथ थे। तो हमारे कुछ भक्त हैं जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करते हैं। तो इसी तरह से तनिचा महापात्र बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ भगवान से, और उन्हीं के पुजारी थे, जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं। और वो क्या करते थे, रोज भगवान की गार्लैंड भगवान को पहनाते थे, भगवान की आरती करते थे। और जब वहाँ के माननीय राजा, उड़ीसा में एक राजा होते हैं आप जानते होंगे ना, राजा आते हैं हमेशा रथ यात्रा में, झाड़ू लगाते हैं, सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं, है ना। तो वो राजा जब भी आते थे तो तनिचा महापात्रा प्रिय पुजारी थे राजा के, और वो क्या करते थे, उनके गले में माला डालते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तनिचा महापात्रा भूल गए भगवान को माला पहनाना, और वो क्या करते रहे, भगवान के नामों का जप करते रहे। क्या बोलते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से भजन करते रहे और भूल गए कि आज मैंने क्या नहीं किया, अपने ठाकुर जी अपने जगन्नाथ को मैंने माला नहीं पहनाई। इतने में एक पुजारी आकर बोला कि अरे पता है तुमको, तुम बैठे यहाँ भजन कर रहे हो, वहां कौन आ रहे हैं, राजा सिंह द्वार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और तो देखेंगे कि जगन्नाथ का डेकोरेशन नहीं हुआ, उनको सजाया नहीं गया, उनका श्रृंगार नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, तुमको सेवा से निकाल देंगे। और एक भक्त के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है, भगवान की सेवा से अलग हो जाना, सबसे बड़ा कष्ट है भक्त के लिए। बहुत ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख है सेवा में लगना, लेकिन भक्त के लिए सबसे बड़ा कष्ट है भगवान से दूर हो जाना। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सो ही जादन सुमिरन भजन न होई। रामचरितमानस में कहते हैं, सुंदरकांड में आता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है जिस दिन कृष्ण, जिस दिन राम का भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता। और हमारी सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, जिस दिन धन नहीं मिलता, है ना, जिस दिन गिफ्ट नहीं आते, दिवाली निकल गई कोई धन नहीं आया, बोनस नहीं मिला, ये सब विपत्ति है। ये विपत्ति नहीं है, मिले मिले ना मिले ठीक है, लेकिन भजन नहीं हुआ ये सबसे बड़ी विपत्ति है हमारे जीवन में। कहते हैं संपदो नाही संपदा, विपदो नाही विपदा, विपदो नारायणम विस्मरणम संपदो नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति है जिस दिन नारायण का विस्मरण हो गया, और जिस दिन नारायण का स्मरण हुआ यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सारे भक्त कौन है, लखपति है, करोड़पति है। जितना नाम लोगे, 1,00,000 नाम लोगे तो लखपति, 1,00,00,000 नाम लोगे तो करोड़पति, 17,000 नाम लोगे तो हजारपति। तो इस तरह से आपको डरना नहीं चाहिए, आप लोग रोज 1728 बार भगवान का नाम लेते हैं। कम से कम इतने बार भगवान का नाम लेने से आपको इतने रुपए तो प्राप्त हो रहे हैं, हरि नाम रूपी धन प्राप्त हो रहे हैं आपको। तो इसी प्रकार से तनिचा महापात्र ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे, और सिंह द्वार से राजा प्रवेश कर गए, और सीधे कहां पहुंच गए, भगवान के विग्रह के सामने पहुंचे, और देखा कि अरे आज जगन्नाथ जी को गार्लैंड नहीं पहनाया गया। तो इससे देख ले, इससे पहले क्या किए, वो जो भक्त थे पुजारी वो दौड़कर आए, और क्या देखा, उनके गले में एक माला थी। अभी वो इधर उधर माला ढूंढते, इससे पहले उन्होंने अपने गले की माला उतार कर जगन्नाथ जी के गले में डाल दी। भक्त को अपराध है, भक्त को कभी अपने गले की माला अपने से वरिष्ठ वैष्णव या भगवान के गले में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन वरिष्ठ वैष्णव और भगवान की माला अपने गले में डालते हैं तो ये प्रसाद बन जाता है, इसको बोलते हैं निर्माल्य, भगवान का महाप्रसाद। और इसको सीते और सोना चाहिए जिससे हमारी इंद्रियां पवित्र होती है। लेकिन उसने उल्टा किया, क्या किया, गले की माला उठाकर जल्दी से डर के कारण जगन्नाथ के गले में डाल दी। लेकिन जगन्नाथ जानते हैं किस लिए किया इसने, कि मेरी सेवा से इसको अलग ना किया जाए। अभी राजा ने क्या देखा, कि गले में भगवान के माला है। जब तक राजा दंडवत करके उठे तो देखा कि माला है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वही माला गले से उतारी जगन्नाथ जी के और राजा के गले में डाली। तो राजा खुश हुआ हमेशा की तरह, सिर पे लगाया तो उसको पुजारी को धन्यवाद दिया और चला गया। जब घर गया राजा तो घर जाकर सिंहासन में बैठ के राजा ने सूंघ रहा था माला को, तो देखा कि उसके अंदर ये जो शिखा होती है इसका एक बाल इसमें अटका हुआ है। तो बोला जगन्नाथ जी के सिर पे तो बाल होते हैं, देखा है हम जगन्नाथ जी का विग्रह, सबने देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सिर पे बाल होते हैं, भगवान के जगन्नाथ विग्रह नहीं होते हैं, भगवान लकड़ी दारू ब्रह्म है, भगवान लकड़ी का विग्रह है, उसमें बाल का डेकोरेशन नहीं होता है, तो बिना बालों के भगवान रहते हैं, उसमें पगड़ी लगाई जाती है, टर्बन बांधा जाता है, सुंदर मुकुट लगाया जाता है, पर बाल नहीं होते। तो राजा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, ये बाल कहां से आया, लगता है कि इस पुजारी ने अपने गले की माला जगन्नाथ को पहनाई, पहला अपराध, और उसके बाद झूठी माला मुझको पहना दी, राजा हूं मैं, तो दूसरा अपराध किया, इसको सेवा से निकालना पड़ेगा। तुरंत उसने अपने सैनिक भेजे और कहा इस पुजारी को राजमहल में लेके आओ। तो जब उस पुजारी को राजमहल में लाए तो बोले कि हे पुजारी, तुमने क्या किया, आज धोखा किया है, अपराध किया है, तुमने जगन्नाथ को अपनी झूठी माला पहना दी। तो बोला कि नहीं नहीं भगवान, हे भगवान, मैंने झूठा नहीं किया है, मैंने जगन्नाथ की माला आपको पहनाई है। अभी वो दृढ़ प्रतिज्ञ था, क्योंकि वो क्या जानता था भगवान क्या कहते हैं, योगम क्षेमम वहां, मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करूंगा, बस तुम भजन क्रिया में लगे रहो, ध्यान पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहो, तुम्हें सारी मुसीबतों से मैं निकालूंगा। तो उसने जल्दी से घबराते हुए बोल दिया, हे राजन, नहीं नहीं मैं सेवा से मत निकालिए, मैंने तो भगवान जगन्नाथ की माला आपको पहनाई है। तो राजा बोला, झूठ बोलते हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये देखो इसमें बाल है, कभी जगन्नाथ के बाल होते हैं? बोले हाँ, अभी तो नए नए बाल लगाए हैं, जगन्नाथ के निकल आए, जगन्नाथ के बाल मैंने तो देखा नहीं, आज भी दर्शन किया, जगन्नाथ के कभी बाल होते हैं? तो बोला चलिए। राजा बोला, अगर कल सुबह मंगला आरती में बाल नहीं मिले तो तुम्हारी खाल निकाल दूंगा। तो इस तरह से जब बोला तो बिचारी तो एकदम पैर कांप रहे थे, पसीना छोड़ रहा था, और घर आया और आकर जगन्नाथ के सामने नतमस्तक होकर लेट गया, दंडवत करके लेटा रहा, रोता रहे, जगन्नाथ अगर तुम सच में जगत के नाथ हो तो क्या करो, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी सेवा से अलग नहीं होना चाहता। तो ये महापात्र पुजारी जो था आया और घर पे लेटा हुआ है रात को और सपने में नींद नहीं आ रही है इसको, और क्या रखा, जहर का ही प्याला रखकर सो गया। क्यों सो रहा है जहर का प्याला रखकर, कि अगर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं करी तो मैं क्या करूंगा, इस सेवा से निकाले जाने से अच्छा है कि मैं जहर पी लूं, कम से कम जगन्नाथ के सामने तो अपने प्राण त्यागूंगा, मंदिर के प्रांगण में अपना शरीर त्यागूंगा। तो भक्त ये सोचता है कि मैं मरूं तो भी किस कहां मरूं, भगवान के सामने मरूं, भक्तों के बीच मरूं। और भौतिक आदमी क्या सोचता है, मरूं तो कहां मरूं, बच्चों के बीच मरूं, परिवार के साथ मरूं, वसीयत के साथ मरूं, ये भौतिक व्यक्ति की सोच है, भक्ति नहीं है। भक्त होता है मैं भक्तों के साथ मरूं, भगवान के दर्शन करते हुए मरूं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तक से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, है ना, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, तो ये भक्त की अभिलाषा है। भक्त चाहता है ऐसा, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इस तरह का दर्शन होना चाहिए। तो फिर तनिजा महापात्र जो था वो रो रहा था, इतने में भगवान आए सपने में और बोले, तू क्यों घबराता है, एक तरफ तू भक्त श्रद्धा रखता है, एक तरफ घबराता है, भक्त को निर्भय होना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी का नाम है अभय, अभय मतलब निर्भय, भक्त को वश प्रचार में लगा लेना चाहिए, भजन क्रिया करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर कृष्ण और गुरु पर आपकी श्रद्धा है कोई नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। तब इस तरह का जब विश्वास होगा तब भगवान की कृपा होती है। तो तलीचा महापात्र सो के उठा और सीधा मंगला आरती के लिए पहुंचा, तो मंगला आरती के लिए देखा राजा पहले से गेट के बाहर खड़े, यार अब तो टाइम भी नहीं है प्रार्थना करने का, हे भगवान मेरी रक्षा करना। जैसे ही पट खोले तो क्या देखा, कटी क्षेत्र कमर तक, कटी क्षेत्र तक भगवान के लंबे लंबे सुनहरे बाल निकले हुए थे। हरिवार हरिवार जय जगन्नाथ, ये भगवान की कृपा थी, निकले हुए थे। तो अभी राजा माना नहीं, राजा बोला कि क्या दर्शन है, इतने लंबे बाल झूठे, तुमने एक अपराध किया फिर झूठ बोला, और अभी क्या किया, फेविकॉल से सर पर भगवान के बाल चिपका दिए किसी और ब्यूटी पार्लर से लाकर, तुम भगवान को अपवित्र कर रहे हो, तुम तो इतने बड़े अपराधी हो, मैं अभी तुम्हें बताता हूं। तो भगवान की पगड़ी ऐसे हटाई और फिर क्या किया, ऐसे करके बाल को खींचा, जब खींचा तो दो चार बाले टूटे खाई में और भगवान के माथे से मस्तक से खून बहने लगा। जब भगवान के मस्तक से खून बह रहा था तो राजा के अश्रुपात होने लगा, आंसू निकल गया, राजा घबरा गया और पूरा मूर्छित हो गया, ये मैंने क्या अपराध कर दिया। ओ पुजारी भी घबरा रहा था, ये क्या लीला चल रही है, खून निकल रहा है भगवान के। और फिर वो जब घबरा रहा था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान क्या हुआ, राजा की मृत्यु हो गई तो सब मुझे अपराधी बताएंगे, आपके मस्तक पर खून देखेंगे मुझे अपराधी बताएंगे, इतना सब लीला करने की क्या जरूरत थी, राजा के सपने में आके समझा देते, मैंने झूठ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या कर दिया आपने। वो घबरा रहा, मेरी रक्षा करो। तो फिर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, राजा को पानी डालकर उठाओ और देखो कि मेरे बाल नहीं है। तो उसने देखा ध्यान से, तो देखा फिर गायब हो गए भगवान के बाल, अब खून भी बंद हो गया है। तो फिर राजा को उठाया कि राजा राजा उठिए, मैंने झूठ बोला था, आप मत घबराइए, आपने अपराध नहीं किया, मैंने अपराध किया, आपको झूठ बोला। तो राजा बोले, नहीं नहीं तुमने कोई अपराध नहीं किया, मैंने भगवान के बाल खींचे। बोले, नहीं जगन्नाथ के बाल नहीं होते। आप दोनों अपनी अपनी गलती मानने लगे, जब दोनों मान रहे हैं तो दोनों ने क्या बोला, देखा सच में भगवान के बाल नहीं है। तो राजा बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जगन्नाथ ने इतनी सुंदर लीला अपने प्रिय भक्त तलीचा महापात्रा के लिए करी। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको देश निकाला देने की वजह क्या दिया, स्वर्ण मुद्रा है और आभूषणों से अलंकृत किया, उसको दिया, दान दिया। तो देखिए भगवान पर अगर विश्वास हो तो भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं, जो कि नकली बात नहीं है, पूरी की जो है प्राकृत लीला है, भगवान के साक्षात दर्शन की लीला है। सोचिए भगवान कलयुग में इस प्रकार की लीला करते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, भगवान के नामों का जप करें, भक्तों का संग करें, तो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों को ध्यान पूर्वक जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसलिए कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। जी स्वच्छता, परिस्त्री संघ, देखिए वैसे तो यह है कि एक स्त्री अगर हमारे हमारे हम विवाहित हैं, हमारे हमारी एक स्त्री से शादी हुई है तो हमें उसके साथ ही रूपा जी बता रहे हैं सिर्फ संग करना चाहिए, और वो भी इसलिए ताकि हम पुत्र उत्पन्न कर सकें, पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर, संतान उत्पत्ति, और वो भी कृष्ण भाव में भवे। बताते हैं गुरु न शिष्यात्, मातृ न शिष्यात्, पितृ न शिष्यात्। वो शिष्य, वो गुरु गुरु नहीं है, वो शिष्य शिष्य नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, जो अपने परिजन अपने डिपेंडेंट्स को क्या नहीं करते, कृष्ण भावना भवन नहीं बनाते। तो जो व्यक्ति इसलिए संग करता है अपना स्त्री का कि मेरी शादी हुई है, मुझे लाइसेंस मिला है, मैं गृहस्थ हूं, मैं भोग कर सकता हूं, तो ये उसकी अपवित्रता का कारण है और इसके कारण वो भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएगा, हमेशा उसी लेवल पर है। जो व्यक्ति इसको दृढ़ निश्चय होकर समझ पाएगा कि नहीं मुझे तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी का संग करना है, तो ये क्या है, वो सही है, वो वैदिक नियम है। लेकिन जो भोग के लिए करता है, चाहे वो पारिवारिक भी हो गृहस्थ भी हो, तो भी वो क्या कर रहा है, वो एक परिस्त्री संग कर रहा है। या फिर व्यक्ति स्त्री के साथ संग नहीं करता लेकिन दूसरी स्त्री के साथ संग करने का विचार करता है, विचार करता है, तो वो भी परिस्त्री संग है, है ना। सही होते हैं भक्त जीवन में ब्रह्मचार्य को पालन किया लेकिन उनके मन में चलता रहता है, जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में क्या आता है कि अगर मैंने शादी की होती तो ऐसी ही स्त्री से मेरी शादी होती, अगर मैंने शादी की होती तो मेरी उम्र के अनुसार इतने बड़े बड़े बच्चे मेरे भी होते। तो जब इस तरह की जो सोच है, ये भी परिस्त्री संग है। रूपा जी साफ साफ मना करते हैं, अगर किसी की ऐसी सोच है तो उसको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, संन्यास या ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, है ना। गृहस्थ आश्रम में जो है उनके लिए बताया गया कि आपको पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति के लिए ही संग करना चाहिए, ये इस तरह से बताया गया। और कुछ जानना चाहते हैं, अरे और यदि आप भक्त नहीं बनाता, नहीं मानते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए अपना जितना हो सके उतना, बाकी फिर तो बताया कृष्ण पर छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रयास नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि घर में टेलीविजन चल रहा है आप बोलो बंद कर दो, मतलब ज्यादातर समय बच्चे क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि माँ बाप खुद करते हैं, खुद तो न्यूज चैनल घुमा रहे हैं रिमोट पर और बच्चे को बोल रहे तुझे कार्टून नहीं देखने दूंगा, तो फिर क्या होगा, लड़ाई होगी। बच्चा वही करता है जो अपने परिजनों को करता हुआ देखता है, आप खुद तो चिप्स खाएंगे सड़क पे और उसको बोलेंगे तू प्रसाद खा, वो क्यों खाएगा? आप प्रसाद खाइए, जब वो आपको चिप्स भी लाकर दे तो बोलिए ये तो अपवित्र है, गंदा है, मैं नहीं खा सकता। तो वो देखेगा बच्चे अपने माता पिता को कॉपी करते हैं तो देखेगा अरे ये तो खुद नहीं खाते, गंदी चीज मैं क्यों खाऊं, वो भी त्याग देगा। टेलीविजन ये नहीं देखते, मैं क्यों देखूं, मैं क्यों त्याग देगा। इस प्रकार से अगर हम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो पहले कृष्ण भावनाभावित खुद बनना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। आप सुबह उठे 4 बजे और जप करें तो बच्चा देखेगा पापा सुबह उठ जाते हैं स्कूल जाने से पहले ही मेरे और जप करते हैं, वो देखेगा पापा तो सो रहे 7 बजे, जब मैं स्कूल जाता हूं तो कहते हैं माला की तूने, माला नहीं की, थप्पड़ मार दी। इस तरह से क्या होता है घर घर जीवन में भक्त नहीं बन पाए। तो आपके जो भी डिपेंडेंट है ना, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है आचरति इति करे प्रचार, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी क्यों कृष्ण अवतारी, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, क्योंकि क्या कहते हैं आचरण ने प्रभु जीवे ने सिखाया, अपने आचरण से जीव को सिखाना चाहिए, है ना। खाली बड़े बड़े प्रवचन देने से या अच्छी बातें बोलने से, स्वामी विवेकानंद के कोट पढ़ने से जीवन में भक्ति नहीं आएगी। कब आएगी? आचरण, आपके आचरण से सबसे बड़ा प्रचार होता है ना। आप अभी यहाँ आए धोती कुर्ता पहन के और बाहर जाकर किसी से एक साथ बैठ के कोई बोले आओ दोस्त चाय पिए, आप चाय पिए और फिर जाकर अपने संस्था में अपने ग्रुप अपने एसोसिएशन में बोले चाय पीना अपराध है बताया जाता है मंदिर में, तुम तो पीते हो हमें बोल रहे। तो पहले खुद पालन करें दृढ़ता पूर्वक, फिर कृष्ण अरेंजमेंट करेंगे पूरा परिवार आपका भक्त बन जाएगा, और ना बने तो फिर कृष्ण की इच्छा छोड़कर कम से कम अपनी आत्मा की रक्षा तो करिए। हम यही समाप्त करते हैं। श्री राधा गोविंद देव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौड़ताय की, पद पावन श्रील प्रभुपाद की, धनतेरस महोत्सव की, धनवंतरी भगवान की, सदा दामोदर भगवान की, कार्तिक महामहोत्सव की, श्रीमद भागवतम ग्रंथ की, यथाताय गोत प्रेमानंदे हरि हरि गौ।